हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही झलक ने थोड़ा सा अपने आप को गिराकर इस तरह की बातें की, दादी ने तुरंत आगे बढ़कर झलक के कान पकड़ लिए। उन्होंने खींचते हुए बोला था, अपनी फालतू की बकवास बंद करो, ये कैसी फालतू और बेकार की घटिया बातें बोली जा रही हैं? क्या कभी मैंने तुझे एहसास होने दिया कि तुम मेरे लिए क्या हो क्या नहीं हो? सिद्धार्थ खुराना की बीवी बनने से पहले ही मैं तुम्हें अपनी पोती मान चुकी थी, तो तुम्हें इस तरह की कोई भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसी बातें करने की इजाज़त है। हाँ, मैं तुम्हें काम करने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर दे सकती हूँ कि तुम्हें कहीं और नहीं बल्कि सिद्धार्थ के साथ ही काम करना होगा, क्योंकि अगर तुम इस तरह से किसी और कंपनी या फिर आर्यन की कंपनी के साथ काम करोगी तो ये हमारे परिवार की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। बेटा देखो, मैं तुम पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा योगदान यानी कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रही हूँ। अगर तुम थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। और हाँ, रही बात सैलरी की, तुम जिस तरह से आर्यन की कंपनी के साथ काम कर रही थी उसी तरह सिद्धार्थ की कंपनी के साथ काम करो और सीधे सीधे तरीके से अपनी सैलरी फिक्स करवा लो, लेकिन तुम्हें काम सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही करना होगा। आर्यन के साथ रहने या मिलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो, मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं कर रही हूँ। वो तुम्हारा दोस्त है, उसने तुम्हारी कितनी बार मदद की है तुमने खुद मुझे बताया है। क्योंकि झलक अपनी माँ की तरह, आर्यन ने आज ये क्या खिलाया क्या पिलाया, वो वहाँ गई क्या बातें की, ये सारी बातें दादी से पहले ही शेयर कर चुकी थी। वो दादी की एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए दादी को आर्यन के बारे में अच्छी तरह पता था। ये हर जगह पूरी तरह फेमस था कि वो शहर की हर नई लड़की के साथ सोता है, लेकिन झलक ने उसे सिर्फ अच्छा दोस्त माना है, ये बात दादी अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे मिलने की इजाज़त तो दे दी थी लेकिन उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। फिलहाल झलक ने गहरी सांस ली और सोचने लगी, ठीक है दादी, आपके कहने पर मैं एक बार ट्राई करूंगी, लेकिन सिद्धार्थ खुराना मुझे अपने साथ काम क्यों करने देगा? वो तो खुद मुझसे बदला लेना चाहता है, मुझे नहीं लगता वो मुझे काम देगा। तो इसीलिए झलक ने साफ साफ दादी से कहा, ठीक है, एक बार आपके कहने पर मैं खुराना कंपनी जाऊंगी और वहां जाकर अपनी नौकरी की बात करूंगी, लेकिन अगर सिद्धार्थ खुराना ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा तो आप मुझे आर्यन के साथ नौकरी करने से नहीं रोक सकती। अब जैसे ही झलक ने सीधे तरीके से ये बात कही, दादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो, लेकिन हाँ, कल से तुम कहीं कोई नौकरी नहीं करोगी। आज तुम अपनी नौकरी की बात करने जा सकती हो, लेकिन कल से हमें रिचुअल करने के लिए जाना होगा, तुम समझ रही हो ना? कल हमें हमारे आराध्य के मंदिर जाना है और तुम्हें वहाँ पूजा करनी है। और एक बात बेटा, तुम्हें आधे दिन का उपवास भी रखना है, पूजा करने के बाद ही तुम कुछ खा पाओगी, समझ रही हो ना मेरी बात? ये सुनकर झलक ने अपनी गर्दन हिलाई और बोली, बिना खाए तो मेरा दिमाग ही नहीं चलेगा, अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो काम कैसे करूंगी? लेकिन फिलहाल बाहर जाने की खुशी में उसने हाँ कह दिया और अपनी स्कूटी की चाबी ली और बाहर निकल गई। वहीं दूसरी ओर रणविजय अनामिका को घूरते हुए बोला था, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ लाने का मकसद है सिद्धार्थ के करीब जाना, तो अब तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि तुम सिद्धार्थ के करीब जाओ। और झलक और सिद्धार्थ भले ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दुनिया के सामने लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन मैं उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग देख चुका हूँ, मैं उन दोनों के बीच का प्यार भी देख चुका हूँ। सिद्धार्थ खुराना चाहता है झलक को, और इतना ही नहीं, झलक भी सिद्धार्थ खुराना को चाहती है। ये बोलते वक्त रणविजय के दांत आपस में भींच गए थे। वो बेहद गुस्से में बोला, जिस दिन तुम सिद्धार्थ खुराना के करीब चली जाओगी और सिद्धार्थ झलक को तुम्हारे साथ देख लेगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसके लिए झलक को छोड़ना आसान हो जाएगा। कुछ भी करके हमें सिद्धार्थ और झलक का डिवोर्स करवाना है। उन्हें डिवोर्स कराने के बाद ही हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है, और याद रखना, इसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी अनामिका ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन एक बात तो बताओ, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी सिद्धार्थ और झलक को अलग करने की, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह से हमें उनकी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता, अगर तुम झलक से प्यार करते हो तो तुम्हें झलक को अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहिए, फिर मैं इस तरह से उन दोनों के बीच में फासले पैदा करवाने की क्या ज़रूरत है? अनामिका की बात सुनकर रणविजय ने अपने दांत भींचे और बोला, बस करो। अब वो थोड़ा गुस्से से बोला था। अनामिका भी तैश में आ गई और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारी कोई पर्सनल मैनेजर नहीं हूँ, एक बात याद रखना, हमारे बीच सिर्फ एक डील हुई है और उसी डील की वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तभी रणविजय ने थोड़ा संयम के साथ कहा, देखो, मेरा इरादा तुम पर चिल्लाने का नहीं था, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम झलक के साथ सिद्धार्थ खुराना का नाम जोड़ो। झलक तो सिर्फ मेरी होगी, और वैसे भी मैं तो यहाँ सिद्धार्थ खुराना से बदला लेने आया था, लेकिन अब तो मेरा मोटिव
नैरेटिव बदल चुका है। अब मेरा मकसद है सिद्धार्थ के हाथों से झलक को छीन लेना और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। और याद रखना, अगर तुम्हें अपनी मंजिल चाहिए और जो कुछ तुम चाहती हो वो सब पाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर अनामिका की आंखों के सामने कुछ अनचाहे दृश्य चमक गए। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अपना मकसद पूरा करने के लिए चाहे मुझे कितने ही लोगों का दिल क्यों न तोड़ना पड़े, मैं तोड़ूंगी। मुझे माफ कर देना झलक, लेकिन मेरी मजबूरी है। ये बोलकर अनामिका वहां से बाहर निकल गई। रणविजय तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ अगर झलक अनामिका की दोस्त है और उसकी दोस्त उसके पति के साथ इंटीमेट या बेड में दिखेगी तो फिर झलक कभी भी सिद्धार्थ खुराना के करीब जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। कहीं ना कहीं ये सोचकर रणविजय के चेहरे पर एक काली संतुष्ट मुस्कान फैल गई थी। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सुबह की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पर वो बड़ी खुशी से सभी के साथ बातें कर रही थी। नैना जी के दिल से एक भारी बोझ उतर गया था कि कम से कम उनकी बेटी को किसी ने तो अपनाया, और वो अब घर में सबके साथ घुलमिलकर बातें कर रही थी। ईशान जी को भी थोड़ा सुकून मिला, लेकिन दोनों को दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था कि उनकी अपनी बेटी असल में चालाक और खतरनाक है। फिलहाल वैभव का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ झलक ने उसकी जान बचाई थी और वो उसका शुक्रगुजार भी था, लेकिन झलक का दूसरा रूप देखकर उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उसने देर ना करते हुए फटाफट नाश्ता खत्म किया और अपनी मॉम को हक करते हुए बोला, शायद मैं आपकी बात सुनने के बाद ये कह नहीं पाया, लेकिन आप मेरी मॉम हैं और हमेशा रहेंगी। आप इस दुनिया की बेस्ट मॉम हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या, कब और कैसे किया, लेकिन इतना जरूर समझ चुका हूँ कि आपने जो कुछ भी किया सिर्फ हमारे लिए किया, और मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। ये बोलकर वैभव वहां से चला गया। नैना और ईशान दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। वहीं नैना मन ही मन बोली,
झलक की बच्ची, तूने पहले मेरी जिंदगी पर बात की और अब मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर रही है। सबसे पहले तूने मेरी जिंदगी में आकर कलंक लगाया था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत दिनों से तू मेरी नफरत की वजह जानना चाहती थी ना? जानना चाहती थी कि मैंने तुझे क्यों फेंक दिया था। मैं तुझे तेरी वजह जरूर बताऊंगी, और जब तुझे सच्चाई पता चलेगी तू समझेगी कि तू असल में कितना गंदा खून है, क्योंकि तू नाजायज है।